Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on 2342-1050 and 2331-4444. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
नमस्कार. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज शनिवार है. आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हम किसी खास कंपनी या विशेष कंपनी के बारे में यहां पर चर्चा नहीं करते. आप हमें 2342-1050 और 2331-4444 पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 अवश्य डायल करें. आपके साथ खबरों पर चर्चा के लिए और प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. कोहली जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार अम्बरीश, नमस्कार वैभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन.
और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव.
Yes, first the headlines. Indian market shines back as investor sentiments get uplifted from news of BJP-led NDA's government formation, third time in a row. Wall Street stocks ended slightly lower. Dow falls 87 points. S&P 500 lost 0.11%. And Nasdaq is down 39 points. And crude oil futures posted a third straight weekly loss. Brent is down 25 cents. West Texas intermediate trades at $75.53 a barrel.
Bhajpa ke नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की लगातार तीसरी बार सरकार बनने से निवेशकों के उत्साहित होने के बीच घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह भारी उछाल दिखाई दिया. वॉल स्ट्रीट में शेयरों में मामूली गिरावट देखी गई. डाउ 87 अंक, S&P 0.11 प्रतिशत और नैसडेक 39 अंक गिरा. और कच्चे तेल के फ्यूचर्स मूल्यों में लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई. ब्रेंट क्रूड में 25 सेंट की गिरावट दिखाई दी. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $75.53 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. और आज की पहली खबर. देश के शेयर बाजारों ने इस सप्ताह उथल पुथल भरे कारोबार में 3% से अधिक की बढ़त दर्ज की. पिछले सप्ताह एग्जिट पोल में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के अच्छे प्रदर्शन की संभावना के बीच शेयर बाजारों में उछाल दिखाई दिया था, लेकिन इस सप्ताह के शुरुआत में लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद गिरावट दर्ज की गई. बाद में शेयर बाजारों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और गिरावट से हुए नुकसान की भरपाई करते हुए 3% तक बाजार ऊपर चला गया. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकास दर में बढ़ोतरी के अनुमानों का भी बाजार पर अच्छा असर हुआ. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के चलते निवेशकों में उत्साह देखा गया. इस सप्ताह बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2732 अंक यानी 3.69% की तेजी के साथ 76693 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 759 अंक यानी 3.37% की बढ़त के साथ 23290 अंकों पर बंद हुआ. सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 76,795 अंक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी ने भी 23,338 अंक की नई ऊंचाइयों को छुआ।
Indian market wiped out previous week losses and gained more than 3% amid extreme volatility led by BJP-led NDA, did not receive a clear mandate as expected in the exit polls. However, the market rebounded strongly and went to an all-time high after RBI raised the growth forecast for financial year 25. The investor sentiments also got uplifted after BJP-led NDA is going to form a new government under Narendra Modi for the third time in a row. And this week, BSE said Sensex gained 2,732 points or 3.69% to close at 76,693, while Nifty 50 index rose 759 points or 3.37% to finish at 23,290. During the week, BSE Sensex hit fresh all-time high of 76,795, while Nifty also inched near to its record high of 23,338. The BSE Small Cap Index advanced 3% and BSE Mid Cap Index rose 3%. In terms of the market value, Tata Consultancy Services added the most, followed by Hindustan Unilever, Reliance Industries and Infosys. On the other hand, Larsen & Toubro, Power Grid Corporation of India and State Bank of India lost the most of their market cap. And we have a caller in this program, the first caller indeed, Faizan Ahmed from Modi Nagar. Aapka swagat hai is show mein. Apna sawal poochhe please.
Namaskar sir.
Namaskar.
Sir, mera sawal tha. Ek property meri mother's ke naam se hai aur wo bech kar hum share market mein paisa lagana chahte hai. Sir, to meri mother se tax degi. Kya mujhe bhi tax dena padega us pe?
जी सर जी
चलिए फैजान भाई, इसमें आपकी मदर के नाम प्रॉपर्टी है तो आप टैक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल गेन का मतलब होता है आपने जितने की खरीदी थी और जितने की आप बेच रहे हैं उसमें जब मुनाफा होता है तो उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। वो फैजान भाई डिपेंड करता है कि आपने किस साल में खरीदी थी। आपकी मदर के नाम पे है तो जिस साल में आपने खरीदी थी उसमें एक इंडेक्सेशन होती है। अगर वो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो उसका फिर 2001 अप्रैल को वैल्यूएशन भी कराया जाता है। उस वैल्यू के ऊपर एक इंडेक्स लगती है, उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। खैर ये तो चलिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका है, पर आपका सवाल ये था कि क्या आपके ऊपर भी टैक्स लगेगा। जी नहीं, आपके ऊपर नहीं, आपके मदर के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर लगेगा तो, वैसे तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये तो सारी कैलकुलेशंस पर डिपेंड करेगा। पर मैं अम्बरीश और वैभव की इजाजत से, इन्होंने एक बात बीच में बोली जो मुझे खटक रही है थोड़ी सी, कि इन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर्टी बेच के और शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूं। दुरुस्त विचार है, पर दोनों फैजान भाई बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। कहां प्रॉपर्टी में बिल्कुल सेफ जमा रहता है पैसा, रियल एस्टेट बोलते हैं उसको, और कहां शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव। तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सलाह ये देना चाहूंगा कि थोड़ा सा संभल के, क्योंकि आपकी मदर के नाम की प्रॉपर्टी है, ना जाने कितने सालों से उन्होंने संभाल के रखी थी, उनकी एक मुश्त प्रॉपर्टी होगी ले दे के। घर में तो ऐसे बात करी जाती है ना, मैं ले दे के, अब तो ये मकान ही है हमारे पास। ऐसे भी घर में हमें कई दफे सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए फैजान भाई कि आप शेयर मार्केट में थोड़ी कम जानकारी के साथ आएं और वहां पर कोई नुकसान हो जाए, कल को आपकी माता जी आपसे, मदर आपसे बोले कि भाई ये तुमने क्या किया। तो इसलिए आप इसको पूरा रिसर्च करें। इसलिए आप, मैं थोड़ा सोच समझ के इसमें कदम रखे, मैं आपके कदम के खिलाफ नहीं हूं, थोड़ा सा आपको मैं अलर्ट करना चाह रहा था, सतर्क करना चाह रहा था कि आप चौकन्ने होकर इस पे करें। बाकी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा, आपके सवाल का सीधा सीधा अगर मैं जवाब देना चाहूं तो।
और दिल्ली से हमारे श्रोता भारत भूषण जी लाइन पे हैं। भारत भूषण जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
सभी का नमस्कार सर
जी, सवाल पूछे।
सरासर से मेरा सवाल ये है सर
जी,
कि जो नई सरकार का गठन होने के बाद
जी
सरकार की किन क्षेत्रों पे ज्यादा ध्यान रहेगा विकास के लिए, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र या कौन सा क्षेत्र में। दूसरा सर, कि जो हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौद्रिक नीति, सॉरी विदेशी मुद्रा भंडार जो है एक बहुत ही अच्छे खासे स्तर पे पहुंच चुकी है सर, तो क्या ये इस जो फंड होता है आरबीआई के पास, तो इस फंड को आरबीआई किस तरह से इस्तेमाल करती है सर। धन्यवाद सर।
चलिए भारत भूषण जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके दोनों के दोनों। आज तो आपने नॉर्मली भारत भूषण जी कृषि संबंधित पूछते हैं और आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल पूछ रहे हैं। भारत भूषण जी, पहला आपका सवाल है कि किस क्षेत्र पे नई सरकार का फोकस रहेगा। मुझे लगता है एनडीए की सरकार वापस आई है, आ रही है, तो ये एक पड़ाव है बीच में इलेक्शन। तो मुझे लगता है जिस एजेंडा को लेकर एनडीए की सरकार आज तक काम कर रही थी पिछले 10 वर्षों से, वो एजेंडा जारी रहेगा। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिक्स में जाऊं आपकी बात का और ज्यादा सटीक जवाब दूं, तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, डिफेंस सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, रेलवेज है, सभी सेक्टर्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस सरकार ने, आपको ध्यान होगा, बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव उठाया है। सड़कें, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, आप देख रहे हैं किस रफ्तार से बनी है। मुझे लग रहा है कि ये जारी रहेगा, इसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कई बार बोला है कि अभी तक जो आपने देखा वो एक ट्रेलर था, तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये जितने भी क्षेत्रों में भारत भूषण जी विकास चल रहा था, उन क्षेत्रों में उनका विकास जारी रहेगा। कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कुछ नया और जुड़ के आए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, बाकी वो क्षेत्र तो रहेंगे। दूसरा, आपने पूछा कि आरबीआई इसको किस तरीके से खर्च करता है। आरबीआई के पास ये जो रहते हैं, ये सारा कैश में नहीं रहता है भारत भूषण जी। पहले तो मैं आपको ये जानकारी, आपके लिए भी और अन्य श्रोताओं के लिए जाना पड़ूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें जो ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आरबीआई की, यूएस ट्रेजरी में, उसमें भी रहता है। प्लस आरबीआई इसका इस्तेमाल समय समय पर हम लोग जो इम्पोर्ट्स करते हैं उसके लिए जो हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है वो यहीं से आती है, पहली बात। दूसरी बात, हमको पता है एक एलआरएस स्कीम होती है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि बहुत काम की बात आपने पूछी है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष $2.5 लाख भारत से बाहर विदेशी मुद्रा में खर्च कर सकता है कुछ निश्चित पर्पजेस के लिए, उसके लिए भी ये पैसा रखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोन्स हैं जो हमने विदेशी मुद्रा में लिए हुए, उनकी जब रीपेमेंट करी जाती है तो वहां रुपए में तो वापसी होती नहीं है, वहां तो डॉलर में होती है। हालांकि अब 15-20 देशों से हम रुपी ट्रेड भी कर रहे हैं, पर ज्यादातर तो ये बहुत चीजों में काम आता है भारत भूषण जी। और $650 बिलियन बल्कि $651.5 बिलियन कल, अगर हम जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास जी, उनका वक्तव्य सुने कल जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड स्तर पर साढ़े बड़ी, मैं समझता हूं भारतीय के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत फख्र की बात है कि आज हमारे इतने बड़े मुद्रा भंडार है, दुनिया के टॉप 4-5 मुद्रा भंडारों में हम एक हो चुके हैं।
आई वुड लाइक टू रिपीट द फोन नंबर्स वंस अगेन सो दैट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड टॉक टू आवर फाइनेंशियल एक्सपर्ट श्री शरद कोहली। द नंबर्स आर 2342-1050 एंड 2331-4444। And we have our next caller, Prashant, calling from Kolkata. Welcome to the show, Prashant. Please ask your question.
Sir, good evening, Martin Mundra Singh, sir.
Very good evening.
Sir, good evening, sir.
Good evening, Prashant.
Please ask your question.
Sir, Sarat ji se mere puchna hai.
Ji.
Last 1-2 saal jo tha, jo PSU stock, aur energy aur defense stock,
ji,
bahut acha return diya.
Ji.
तो अभी जो नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ
जी,
तो कुछ हद तक कोअलिशन है, तो वो जो अगला 2-3 साल इसी सेक्टर की अच्छा रहेगा और चेंज होगा, थोड़ा बताइए।
प्रशांत जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे नहीं लगता प्रशांत जी के कोलिशन गवर्नमेंट होने की वजह से, हालांकि कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि शायद पीएसयू स्टॉक्स सब उतने ना चढ़ पाए जितने चढ़ गए हैं। कुछ एक पीएसयू स्टॉक्स हैं प्रशांत जी जिनकी, देखिए इसमें मैं कोलिशन का आस्पेक्ट नहीं लाता, मैं इसको आपको दूसरे पहलू से बता देता हूं कि हर एक स्टॉक का एक पीई रेशियो होता है, उसकी बुक वैल्यू होती है। तो कुछ एक पीई स्टॉक्स है, क्योंकि हम यहां नाम नहीं लेते हैं तो मैं स्पेसिफिक्स में तो नहीं जा सकता, जिनकी थोड़ी सी वैल्यूएशन अब बढ़ चुकी है क्योंकि उनकी कीमतें पहले इतनी बढ़ चुकी हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ समय के लिए। पर बाकी पीएसयू स्टॉक्स की तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, तो आप उसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो हैं, पीएसयू सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और मुझे लग रहा है उनके अंदर एक काम करने का नया जज्बा, नया जोश आया है, उनकी ऑर्डर बुक्स फुल हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो मुझे लगता है पीएसयू स्टॉक्स आपको प्रशांत जी अंडर वैल्यूड निकालने पड़े। एनर्जी सेक्टर की आपने बात करी, वो सेक्टर तो हमेशा ही हरियाली भरा है, वो हरा सेक्टर, ग्रीन सेक्टर बोलता हूं, खासकर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में आप जाएंगे तो आपको और ज्यादा ग्रोथ मिले। तो मुझे लगता है ये लोगों के मन में अंदेशा है कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट है तो ये स्टॉक नहीं बढ़ेगा। कोलिशन गवर्नमेंट और जो जितने भी एनडीए के पार्टनर्स हैं वो सब एकजुट हैं और सभी विकास की तरफ सबकी नजर है, कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जो कि विकास को नहीं चाहता है। तो अगर देश विकास करेगा और सरकार की मंशा विकास की है तो कोई कारण नहीं है कि स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। बीच बीच में झटके लगते रहते हैं, बीच बीच में शेयर मार्केट ही क्या हुई जिसमें उतार चढ़ाव ना हुआ, एक खूबसूरती है शेयर मार्केट की। बाकी अगर आप लंबी अवधि के लिए प्रशांत जी कर रहे हैं तो आपने जिन सेक्टर्स का नाम लिया मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं।
एब्सोल्युटली सो व्हाट कोहली सर हैज ट्राइंग टू से दैट स्टेडफास्ट डेवलपमेंट stability,
absolutely,
and sustainability are the words that the investors should focus on.
Undoubtedly.
और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं. प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
मार्केट मंत्रा टीम नमस्कार, शरद जी को भी नमस्कार.
नमस्कार नमस्कार प्रकाश जी.
सर मेरा सवाल तो जो था वो मेरे से पहले वाले ने भी काफी कुछ पूछ लिया.
अरे 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 चलिए आपकी आवाज फिर भी सुनिए.
ये मैं ही चाहता था नई कोलिशन गवर्नमेंट के आने से कैपिटल मार्केट पे आगे चल के और जो म्यूचुअल फंड पे क्या मैं कंटिन्यू रखूं, क्योंकि अब पहले जैसी बात रहेगी कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसे लगता है.
मुझे देखिए पॉलिटिकल, ये कोई पॉलिटिकल शो तो है नहीं प्रकाश जी. पहली बात तो इसमें हम पॉलिटिकली कोलिशन गवर्नमेंट के क्या फायदे होते हैं, पॉलिटिकली क्या नुकसान होते हैं, उसकी हम यहां पर चर्चा नहीं करते हैं. पर इतना जो मैं पहले आप सुनी रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा और आपके लिए उस पर प्रकाश डाल देता हूं. आपका तो नाम ही प्रकाश है, मैं उस पर प्रकाश डालता हूं कि इसमें देखने वाली बात यह है कि विकास की जिस इंटेंशन को सरकार लेके चल रही है, जो मंशा है सरकार की विकास की, उसमें कोई भी तब्दीली होने वाली नहीं है. और जितने भी क्षेत्रों में सरकार ने विकास का संकल्प लिया हुआ, एक विकसित भारत का 2047 का संकल्प है, तो मुझे लगता है, मैं इसको अंग्रेजी में बोलता हूं, द इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज इरिवर्सिबल नाउ. मुझे नहीं लगता भारत का यहां से आगे विकास अब वापस मुड़ने वाला है. और एनडीए सरकार तो है, ये कोलिशन पार्टनर्स, जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं, मैंने बड़ी बारीकी से सब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अध्ययन भी किया. मुझे लगता है कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो विकास नहीं चाहती. इनफैक्ट एनडीए में उन सबका जुड़ना विकास का मंत्र लेके ही वो साथ में जुड़े हैं, वरना शायद वो एक साथ, अगर आइडियोलॉजी अलग अलग होती तो फिर तो एनडीए का गठबंधन नहीं बनता. तो सब विकास चाहते हैं, तो अगर सब विकास चाहते हैं तो मैंने जैसे पहले कहा, मैं दोहराना चाहूंगा, कोई कारण नहीं है कि आपको इसमें कोई डरने का कि अब पहले वाली बात नहीं रहेगी, अब वो बात नहीं रहेगी. ये एक अंदेशा है और आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा, अनलेस की कोई पॉलिटिकल उसमें कारण बनते हैं, कोई जैसे जैसे समय बीतेगा ये जो लोगों के मन में अंदेशा है ये धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगा.
ब्रिलियंटली सेड शरद सर. वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर, जितेंद्र जी, आपका स्वागत है शो में, अपना सवाल पूछिए.
हाँ धन्यवाद सर. कोहली सर, अभी आपने जो बता रहे थे श्रोता को उसमें मेरा एक प्रश्न हल हो गया
जी.
उसमें तो मैं वो प्रश्न हटा देता हूँ
जी.
अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि रेपो रेट होता क्या, इसमें आम आदमी को दुखी होना चाहिए कि खुशी होना चाहिए.
देखिए रेपो रेट में, रेपो रेट होता है, उसको रिपोजिटरी बोलते हैं. अगर मैं पूरी बात, ये वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई जो होता है वो, जैसे हमारे बैंक होते हैं ना, जितने भी बैंक हैं, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और प्राइवेट बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, हम लोग उसमें बैंकिंग करते हैं. ऐसे जब बैंकों को बैंकिंग करनी होती है तो वो रिजर्व बैंक में करते हैं, मतलब आरबीआई को बोलते हैं बैंकर्स बैंक. तो जिस रेट पर जितेंद्र जी बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, उसको हम रिपोजिटरी रेट कहते हैं. मैं दोहराता हूं अपनी बात को, जिस रेट से बैंक उधार लेते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं. आपके लिए कोई सुख दुख होने की बात नहीं, क्योंकि अभी तो रेपो रेट 6.5% पर बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव किया नहीं गया. बस ये कुछ लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ईएमआई जो जाती है, मकान का लोन लिया है, गाड़ी का लोन लिया है, कंज्यूमर, आजकल तो लोग घूमने फिरने का लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लिया, उसकी ईएमआई जाती है, तो वो ईएमआई अभी घटने वाली नहीं है. पर आने वाले समय में मेरा ऐसा अनुमान है कि चार, क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट्स घटाया है, तो एक कहीं शुरुआत हो चुकी है, तो ये रेट आने वाले समय में घटेंगे जितेंद्र जी. तो फिर आपके लिए खुश होने की बात होगी, अगर आपने बहुत सारी, मुझे नहीं पता आपकी कितनी ईएमआई जाती है, आपने कितना उधार लिया हुआ है, उधार तो वैसे कम ही लेना चाहिए, पर अगर बहुत ज्यादा आपने दिया भी हुआ है, तो आने वाले इस साल के अंत तक आपको कहीं शायद आरबीआई रुख बदले और धीरे धीरे ये ब्याज की दरें आपको कम होती दिखाई देंगी. मैं उम्मीद करता हूं आगे से जब आप रेपो रेट सुनेंगे, इसको रिपोजिटरी कहते हैं पूरा वर्ड, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि रिपो का क्या मतलब. एक रिवर्स रिपो भी होता है, पर मैं अपने आप नहीं बताऊंगा, जब कभी आप पूछेंगे फिर बताऊंगा मैं जी.
जी, और दिल्ली से हमारे श्रोता बी आर नाथ जी लाइन पे हैं. नाथ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
नमस्कार सर, कोहली साहब को नमस्कार.
नमस्कार नमस्कार नाथ साहब.
26 AS
जी
और AIS
जी
अभी तक कम्प्लीट अपडेट अपलोड नहीं हुआ है.
जी जी जी.
और क्या नाम, हालांकि 1 अप्रैल के आज तक मोर देन 65 डेज हो गए.
जी जी जी.
और दूसरी बात ये, हम लोग, आई एम सुपर सीनियर सिटीजन अबाउट 85
जी,
तो उसमें कागजात नहीं मिलते हैं, करना मुश्किल हो जाता है
जी.
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पेंशनर्स है अबाउट 85
जी,
पेंशनर शुड गिव हार्ड कॉपी सो दैट ही कैन कैलकुलेट एंड फिल अप द थिंग्स.
जी जी जी. बिल्कुल नाथ साहब, 26AS का मैंने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का मैं अम्बरीश और वैभव को बताना चाहूंगा। मैंने इनके बड़े आसान नाम रखे हैं। 26AS का नाम मैंने रखा है 26 आमना सामना AS, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपने TDS से, अपनी इनकम से। और मैंने AIS का भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा है, आईना इसे समझिए, क्योंकि आपको सारे ट्रांजैक्शंस का आईना दिखा देता है कि आपने साल भर में कहां इन्वेस्ट किया, क्या खर्चा किया, बड़ा छोटा, ये वो। नाथ साहब थोड़ा सा इंतजार करिए, ये आपको इस महीने के मिडिल तक और 15 और 30 जून के बीच में अपडेट होता दिखेगा। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन बहुत जगह से कोलेट होती है, उसका कारण बता दूं मैं क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 31 मई तक TDS जो डिडक्टर्स फाइल करते हैं उसकी लास्ट डेट होती है, तो सिस्टम है उसको धीरे धीरे अपडेट करता है। पीछे इलेक्शंस की मशीनरी भी काफी लगे हुए थे, इलेक्शन में बिजी थे, आपको बहुत जल्द अपडेट होता दिखेगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जैसे सीनियर पहले, तो आपको प्रणाम, 85 ईयर से ऊपर के या मार्केट मंत्रा के इतने रेगुलर श्रोता हैं, तो आपके चरण स्पर्श हम करना चाहेंगे, रेडियो पे हो नहीं सकते पर मन से करते हैं। पर इसका हार्ड कॉपी का आपका सुझाव अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाज उन गलियारों तक पहुंच रही है जहां से ये पॉलिसी बनाई जाती है, और शायद कोई आवाज सुन के आपकी बात पर ध्यान दे। पर आजकल नाथ साहब आप तो बहुत एजाइल हैं, बहुत जानकार श्रोता है, थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर पे फोन पे जानकारी रखिए तो बहुत आसान होता है देखना, कागज वागज संभालना थोड़ी पुरानी बात हो गई, आपके जमाने में कागज चलते थे, पर थोड़ा सा अपने आप को करिए। बहुत सारे सीनियर सिटीजन मुझे मिले जिनको अब उन्होंने अपनी फाइलें खत्म करके और अपने फोल्डर्स बना लिए कंप्यूटर पर, फोन्स पर। पर नाथ साहब आपको प्रणाम है कि आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा, और पर बहुत जल्द आपको ये अपडेट होता दिखाई देगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, 31 जुलाई लास्ट डेट है, आपको पर्याप्त समय मिलेगा रिटर्न फाइल करने का।
So digitization is the word moving forward.
Absolutely.
हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश बस्ती से, संतोष सिंह जी। संतोष जी आपका स्वागत है शो में, अपना सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग सर।
वेरी गुड इवनिंग
जी। कोहली सर को भी गुड इवनिंग।
नमस्कार संतोष जी, गुड इवनिंग।
सर जस्ट मुझे ये जानना है कि ऑलरेडी मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ काफी दिन से
जी,
तो एक कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया था जो 10,000 का अमाउंट था
जी,
लेकिन हमारे बैंक में क्रेडिट आया
जी
10% डिडक्ट होके
जी,
तो ऐसा हो सकता है क्या, मतलब डिडक्ट होके आना चाहिए या फिर कैसे होता है डिविडेंड वाला जो?
संतोष जी उस पर उन्होंने TDS काटा है, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो उन्होंने काट लिया है। और आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 26AS, अभी आपसे पहले एक श्रोता पूछ रहे थे, तो 26AS पे वो दिखाई दे जाएगा। और अगर आप रिटर्न नहीं भी फाइल करते हैं फिर भी आपका डिविडेंड कट गया, मान लीजिए आप टैक्सेबल नहीं है, तो आप रिटर्न फाइल करिए संतोष जी, बड़ी फटाफट आजकल रिफंड आता है, आप रिटर्न फाइल करिए, जल्दी से रिफंड आ जाता है। और जब फंड आए तो अम्बरीश वैभव हम लोग कुछ लड्डू वड्डू का इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैसा मिल जाता है हमारी सलाह से बता के। अब रेडियो पे लड्डू तो आ नहीं सकते, मन से ही खा लेते हैं। पर संतोष जी बिल्कुल चिंता की बात नहीं, 31 जुलाई रिटर्न फाइलिंग करने की लास्ट डेट है, आपको आप रिटर्न फाइल करके और इस पैसे को बकायदा वापस ले सकते हैं अगर आपका टैक्सेबल नहीं बनता है, और अगर बनता है तो वो आपके टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा।
एब्सोल्युटली। नाउ मूविंग ओवर टू आवर नेक्स्ट story about the US markets. Wall Street stocks ended slightly lower on Friday in choppy trading after stronger than expected US jobs data pointed to a robust economy but promoted worries the Federal Reserve may wait longer to cut interest rates than many investors had hoped. The Dow Jones Industrial Average fell 87 points or 0.22%, the S&P 500 lost 5 points or 0.11%, and the Nasdaq Composite was down 39 points or 0.23%. Sharad sir, do you see any in the foreseeable future, any changes in the Fed Reserve rates for now, as they are also looking to expand themselves?
Yeah, we are getting mixed opinion from different state Fed governors. You know, there is a Fed governor, then there are state governors as well. So there is a mixed opinion coming, but somehow they feel, and I'm remembering the words of our own governor, Mr. Shaktikant Das, the Reserve Bank governor. He said that this last leg of inflation is proving to a bit stubborn, you know, it's proving to be tough, you know, so to overcome that last leg, although the inflation has come down across the world. In fact, the European Central Bank has already cut it down by 25 basis points. They made a beginning. So I think just after the elections in US conclude, there might be, with other things remaining constant, of course, there should be no geopolitical flare-ups in between. So I think there could be a chance of Fed looking at, after, say, 2 to 3 Fed meetings, we might see something happening on that front, yeah.
और मुंबई से हमारे श्रोता हसमुख डेडिया जी लाइन पे मौजूद हैं। हसमुख जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्री।
गुड इवनिंग जी, सवाल पूछिए।
ऑफ फर्स्ट ऑफ कोहली साहब, जो मेरा प्रश्न है
जी,
जो अभी का जो आपकी स्टोरी थी उसके ऊपर ही है
जी,
ईसीबी ने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट कम किए
जी,
बैंक ऑफ कैनेडा ने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट कम किए
जी,
लेकिन हमारे जो दास साहब है शक्तिकांत दास साहब आरबीआई के गवर्नर
जी जी जी,
वो थोड़े से झिझक रहे हैं, तो आपका अनुमान क्या है कि ये जो उनकी झिझक है वो कभी खत्म होगी?
देखिए हसमुख जी, आपका नाम हसमुख है, आपने हमें भी हंसा दिया एकदम, क्योंकि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो झिझक, देखिए इसमें कोई झिझकना नहीं होता है कोई, ये तो ऐसे है नहीं कि मैंने एक लड्डू खाया और दूसरे लड्डू में मैं झिझक रहा हूं कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए। एक बोर्ड होता है आरबीआई का, और देखिये जब उन्होंने शुरू किया तो 4:2 पे उन्होंने कहा कि 6 बोर्ड मेंबर्स में से 4 की ओपिनियन थी कि अभी नहीं बढ़ाया जाए, नहीं घटाया जाए, 2 शायद ये मानते होंगे घटा सकते हैं। उन्होंने, आपने अगर ध्यान से उनका वक्तव्य सुना हो तो उन्होंने ये कहा कि जो दालों के और सब्जियों के दाम हैं ये थोड़े से अभी सरदर्द बने हुए हैं, और फूड और वेजिटेबल्स और पल्सेस की उन्होंने बात करी, तो जो फूड की जो इन्फ्लेशन है वो अभी थोड़ी सी उनके जो टॉलरेंस लेवल है उससे बाहर है, 4% वो चाहते हैं कि नीचे आ जाए, और इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं कि बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा कोई पेन हो रहा है, मैं ये तो नहीं कहता कि पेन बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो उतना नहीं हो रहा है अर्थव्यवस्था हमारी, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो ग्रोथ क्वेश्चन मार्क लग जाता है, पर इतने इंटरेस्ट रेट्स होने के बाद भी हम, उन्होंने 7.2% रियल जीडीपी का जिक्र किया जो कि बहुत ही हेल्दी है, तो झिझक विझक नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में उन्होंने संकेत दिया है कि जैसे ही डेटा हमें फेवरेबल दिखाई देगा, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करी, उन्होंने पीएमआई की बात करी थी, उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करी थी, उन्होंने जीडीपी की बात करी, उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बोली, तो इसमें झिझकना नहीं होता, एक बोर्ड डिसाइड करता है, शक्तिकांत दास साहब अकेले नहीं डिसाइड करते, पूरे बोर्ड में बगैर उसमें वोटिंग होती है, और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हसमुख जी आपको वाकई में मुस्कुराने वाली कोई खबर इंटरेस्ट रेट्स में मिल सकती है।
और हमारे अगले कॉलर भी मुंबई से हैं, रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, आपका स्वागत है शो में, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
हेलो, गुड इवनिंग सर, जगत मोदी को नमस्कार।
गुड इवनिंग रत्नाकर।
हाँ, मेरा सवाल है कि कैपिटल गेन के बारे में है
जी,
कि समझो 5 साल पहले मैंने एक साल एक कंपनी के शेयर लिए थे
जी,
बाद में सिस्टर कंपनी उनकी हो गई
जी,
और उन्होंने हमें शेयर दे दिए
जी,
5 साल के बाद, 5 साल की पहली कंपनी अभी उन्होंने शेयर दी थी, तो उसके ऊपर हम बेचने के बाद उसका कैपिटल गेन जो काउंट होगा, तो पहले यदि इस कंपनी ये सभी से ले हो जाएगा कि अलॉटमेंट हो गया सभी से हो जाएगा?
देखिए रत्नाकर जी, जब दूसरी कंपनी ने वो कंपनी को टेक ओवर किया था या शेयर्स लिए थे, अगर उस समय आपको कोई मुनाफा हुआ था तो अगर उस टाइम आपने कैपिटल गेन नहीं दिया है तब तो फिर ये शुरू से काउंट होगा, पर अगर जब दूसरी कंपनी ने सेम प्राइस पे टेक ओवर किए थे और अब आपको जो उस पर मुनाफा हो रहा है तो फिर जो डिफरेंस होगा उस पर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि दो बार, एक तो पहली बार टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा ये भी सच है कि टैक्स कहीं मिस भी नहीं होगा, मतलब कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आया तो आपको उसका टैक्स का फायदा मिल गया, ऐसे भी नहीं होने वाला है। तो मैंने आपको ये ऐसा लिटमस टेस्ट बता दिया है, पैमाना, कि आप इस पे कसौटी होती है ना, उस पर सोने को कसते हैं, तो आप उस पर कस के देख सकते हैं, क्योंकि टैक्स में दो बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे फैक्ट्स इसके लिए मुझे देखने पड़ेंगे, किस डेट को लिया था, किस वैल्यू पे लिया था, किस अमैलगमेशन का रेट क्या था, पर मैंने आपको ये दो ऐसे पैमाने बता दिए हैं कि दोबारा टैक्स भी नहीं जाएगा और टैक्स मिस भी सरकार का नहीं होना चाहिए। तो इन दो पैमानों पे आप इसको कस के देखिएगा, आपका जवाब निकल आएगा। अगर आप कभी स्पेसिफिक्स बताएंगे, वैल्यू कितनी थी और कितने का शेयर दूसरी कंपनी ने लिया था, आपने कितने का लिया था, बेचा कितने का, ये सब जब डेटा होगा तो फिर मैं इसमें और स्पेसिफिक जवाब दे सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन पैमानों के बिहाफ पे आप निर्णय कर सकेंगे।
Crude oil futures Friday posted a third straight weekly loss on worries that demand may be softening even as OPEC Plus plans to increase production. US crude oil and global benchmark Brent sold off early in the week after OPEC Plus members announced that they would start phasing out 2.2 million barrels per day in production cuts starting in October. Poor US manufacturing data and weak private payrolls also weighed on the market.
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, इंडियन मार्केट शाइन्स बैक एज इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स गेट अपलिफ्टेड फ्रॉम न्यूज ऑफ बीजेपी लेड एनडीए'स गवर्नमेंट फॉर्मेशन थर्ड टाइम इन अ रो। वॉल स्ट्रीट स्टॉक्स एंडेड स्लाइटली लोअर, डू फॉल्स 87 पॉइंट्स, एस एंड पी 500 लॉस 0.11%, नैसडैक इज डाउन 39 पॉइंट्स एंड Crude oil futures posted a third straight weekly loss. Brent is down 25%. WTI trades at $75.53 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.